भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक पर ब्रह्म सतगुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो हरि रामा मुर भवन में या पद समान को चला गया। प्रथम तो सब कोई ये चेष्टा करे कि कम से कम 2 घंटा रोज सत्संग की बातें सुनने में बिताए, कम से कम सत्संग में ठीक समय से जावे। चौबीस घंटे में रोजगार में 12 घंटा काफी है, बाकी नींद प्रमाद बकवाद निंदा आदि में बीतते हैं। आप सोचो ऐसा व्यर्थ समय शायद पशु भी नहीं बिताते होंगे। पशु किसकी निंदा करेंगे, पशु क्या बकवास करेंगे, नींद नींद आती है बस, नींद में तो हर्जा नहीं, बकवाद में निंदा में समय तो व्यर्थ होता ही है, स्वभाव कितना खराब पड़ता है। ज्ञान वैराग्य प्रेम और भक्ति बढ़े ऐसे काम में समय को लगाओ। ये समय कोई नष्ट करने के लिए नहीं है, समय को यूं ही नष्ट करते हैं ये बड़ी भारी खराब आदत है। जैसे कोई विष तो खा ले और गले में छुर्रा मार दे तो वो विष ही उसको मार देगा, छुर्रा और लगा रहा है। ऐसे ही समय भी खराब करना और निंदा करना, चुगली करना, दूसरों के दोषों को बताना कितनी मूर्खता है। माताओं बहनों के लिए बात है कि जो बात वो सुने, सत्संग की बात सुने, उसका प्रचार करो घर में। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जो बात मैं तुमको बता रहा हूं, जो लोग इस बात का प्रचार करते हैं वे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। उनको बहुत जल्दी मेरी प्राप्ति होगी। जो भक्ति में ये समय लगाते हैं वो तो मेरे दलाल हैं। जो स्त्री सुहागन है वह पति की सेवा, उसकी आज्ञा पालन सब कुछ पति के लिए ही करती है, उनके कहे के अनुसार चलती है, यह उस स्त्री का परम धर्म है। ऐसे ही अपने सबके पति भगवान हैं। स्त्री को भी पति के अंदर भगवान का भाव रखकर काम करने से पति सेवा तो होती ही है, भगवान की भक्ति और हो जाती है। पति की सेवा से डबल लाभ हो गया। पति में भगवत बुद्धि रहे तो पति की सेवा भी हो गई और भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा का डबल लाभ हो गया। अपने से बड़ों की सेवा, छोटों से दुलार, ये व्यवहार में बहुत अच्छी बात है। हर वक्त हंसते रहो, चेहरे को खराब मत बनाओ, चेहरे को खुश रखो। घर में भी किसी से बोलो तो हंसकर बोलो, ये बड़ी अच्छी बात है। एक दूसरे को देखकर जो जलते हैं, लिखा हुआ बोलते हैं भाई, प्राय करके स्त्रियां आपस में ज्यादा जलन रखती हैं। एक दूसरे को देखकर जलती हैं, डाह करती हैं, बुराई करती हैं, तो हमको बड़ा विचार आता है कि ये नाहक नरक का रास्ता क्यों बना रहे हैं। इसे तो नरक मिलेगा। और जो स्त्री खुश रहती है, सबकी सेवा करती है, प्रेम से बोलती है, अपने हृदय को बराबर टटोलती है कि कहीं मेरे मन में किसी के प्रति जलन तो नहीं है, मेरे मन में किसी के प्रति बुराई का भाव तो नहीं है, वो यहां भी आनंद में रहती है और मरने के बाद भी आनंद में रहती है। कहा है, सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद। आप जो आपस में, बहुत ध्यान देना, आप जो आपस में एक दूसरे से खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव करते हैं, एक दूसरे के साथ जलन हटाकर, द्वेष हटाकर जो मधुर व्यवहार करते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कामना नहीं, तो इस व्यवहार मात्र से भगवान खुश हो जाते हैं। ऐसे व्यवहार करने वाले से भगवान को अपनी भक्ति की बड़ी उम्मीद होती है। जाति सुंदरता ये कुछ नहीं है, भगवान का प्रेम सबसे ऊंचा है। कोई चाहे किसी जाति का हो, यदि उसमें भगवान की भक्ति हो गई तो बहुत ऊंचा है। और ब्राह्मण भी क्यों न हो, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का भजन नहीं करता है, तो उसकी ऊंची जाति क्या काम आती है। वाणी के द्वारा सत्य बोलना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे अच्छे संतों के वचन है उनको पढ़ना चाहिए। ये काम नहीं करोगे तो पशुओं में और मनुष्य में क्या अंतर रहा। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ये सब बातें जिसमें नहीं वो पशु है। न विद्या है, न दान है, न शील है, न ब्रह्मचर्य पालन है, न गुण है, न धर्म है, न उत्तम क्रिया है, न उत्तम भाव है, वो पशु है। पशु नहीं, पशु से भी नीचा है ये, पशु जानता नहीं। मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण बताए, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति क्षमा दम अस्तेय, अस्ते माने चोरी नहीं करना, शौच इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। धर्म की व्याख्या ऐसे समझनी चाहिए कि कोई भी विपत्ति आए उसमें घबराओ मत, चाहे घर में कोई मर ही जाए तो भी अंदर से दुखी मत हो, इसका नाम है धर्म। क्षमा, कोई अपराध कर दे तो उसका बदला नहीं लेवे, इसका नाम क्षमा है। दम, दम माने मन की, मन को वश में करना। अस्ते माने चोरी नहीं करना। शौच माने भीतर बाहर की पवित्रता रखना। बाहर पवित्रता के लिए जल मिट्टी आदि का प्रयोग करना और भीतर काम क्रोध लोभ आदि मल को हटाना, इसके लिए सत्संग शास्त्र स्वाध्याय श्रेष्ठ पुरुषों की सन्निधि ये साधन है। निग्रह इंद्रियों को वश में करना। धी माने बुद्धि द्वारा विद्या प्राप्त करना। सत्य माने सत्य बोलना, सब चीजों में सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है। यदि कहीं सत्य बोलने से आपको नुकसान दिखता हो तो मौन रहना श्रेष्ठ है, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर सेठ जी ने पिछली बार के लेखों में एक बात बताई थी कि जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है और दूसरे का हित दिखता हो तो वहां झूठ में पाप नहीं लगता। जैसे आप यहां बैठे हैं, एक गाय इधर से गई और कोई पूछता है कि जी एक गाय इधर से गई, आपने देखा क्या, वो गाय को मारेगा? तो कहते नहीं, इधर नहीं, इधर गई है, उसको इधर भेज दो। ऐसे झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। दिखने में तो झूठ है पर पाप नहीं लगता। अक्रोध, क्रोध नहीं करना। धृति माने धैर्य रखना, संतोष रखना। ये 10 जिसमें रहते हैं वो मनुष्य है, नहीं तो पशु के समान है। आप ये मत समझना कि पाप करने से केवल आपको नरक मिलेगा, इतनी बात नहीं है। आप पाप करोगे तो उस पाप से पृथ्वी पर भार बढ़ता है और इस भार के बढ़ने से आपको दुगना पाप लगेगा। एक तो पाप करते हो वो, और एक पृथ्वी पर भार और कर दिया, ये दुगना पाप लगता है। पहाड़ों का भार इतना नहीं है जितना पापों का भार है। तो कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य डबल पाप कमा रहा है। अपने आप को सावधान करो और इन पापों से हटो। पशुता हटाकर अपने में मनुष्यता लाओ। आप और बात का तो घमंड करते हो, हम धनी हैं, हम ऐसे हैं, हम वो हैं, पर इस बात का घमंड क्यों नहीं करते कि हम मनुष्य हैं और हम भगवान की प्राप्ति के लिए आए हैं? इस बात का घमंड करो ना। ऐसा घमंड यदि अपने में नहीं होता है तो अपन पशु है, ऐसा घमंड तो होना चाहिए। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक बात और ध्यान में आ रही है, माताओं बहनों और पुरुषों को सबको ध्यान देकर के सुनना चाहिए कि आप अपने जीवन में आय से अधिक खर्च मत करो। आय से अधिक खर्च करने पर मनुष्य को बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, ये बहुत बुरी आदत है। इसका फल क्या होगा मालूम है? यदि आय से अधिक खर्च करोगे, आमदनी से अधिक खर्च करोगे तो किसी न किसी से ऋण लेना पड़ेगा और ऋण लेना भारी पाप है, बहुत ही खराब है। है उससे काम क्यों नहीं चलाते? जितनी आय है उतने काम चलाओ। काम चलाने में कभी आय की कमी नहीं रहती है। विलासिता में जब जाते हैं तब आपको आय कम दिखती है और फिर ऋण लेते फिरते हैं। ऋण भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है, बहुत खराब है। पाप तो भगवान के नाम से नष्ट हो जाता है पर ऋण चुकाने पर ही नष्ट होगा और बीच में मर गए तो अवश्य उसको नरक में जाना पड़ेगा। रुपए का ऋण तो रुपए देने से ही चुकेगा, नहीं दे सके तो दूसरे जन्म में देना पड़ेगा। कोई कहे कि हमको रोजगार के लिए थोड़ा बहुत ऋण लेना पड़े तो कि बहुत कम ऋण ले ताकि आसानी से आप उसको उतार सको, है? नहीं, ये तो किसी के मिली सूट नहीं देते हैं सेठ जी। किसी से भी नहीं ले, उतना ही ले जितने से अपना निर्वाह हो सकता, वापिस अपन चुका सकते हो। गलत है, अपन तो नहीं लेना चाहिए, वादा भर दे उधर, ठीक है। रोजगार के लिए ऋण लेगा वो भी उसी प्रकार है, रुपया जितना हो उसी के अनुसार रोजगार करे, नहीं तो नौकरी करो, दलाली करो, काम तो बहुत है आजीविका चलाने के लिए। ये जो भोग विलास के लिए ऋण लेते हैं ये तो हमें प्रत्यक्ष पाप ही दिखता है। जो कोई दान लेकर उड़ाते रहते हैं ये महान अपकर्म है। ब्राह्मण ही दान का अधिकारी है। सरकार जो सहायता देवे और लेवे देवे ये सब के अपकर्म है, वो ध्यान लेर उड़ावे है, अपकर्म है। अपकर्म दान लेना केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है और जातियां दान की अधिकारी नहीं है। हाँ, आपत्ति काल में अन्न का दान दे सकते हैं, वो भी प्राण बचाने के लिए, बस। एक भाई, एक माई या भाई, एक माई आपकी लड़की ने 200 रुपया दे दिया, उसे विदा किया, 200 रुपया दहेज में दिया और 200 रुपया लड़की ने उधार ले लिया। जब गई तब 200 चोर करके ले गई, तो ये चोर करके ले गई, बड़ा भारी पाप हुआ। अच्छा, एक लड़की 200 रुपया, एक लड़की को, एक माई ने 200 रुपया लड़की को दान दिया, एक माई ने दूसरी लड़की को 200 रुपया विदा किया तब दिया और एक लड़की ने अपनी माँ के 200 रुपये उधार लिए और एक ने 200 रुपया चोरी कर ली, तो इसमें जो चोरी करके ले गई ये महान पाप किया है। जो उधार लेकर के गई है उसने चोरी की अपेक्षा थोड़ा कम काम कम पाप किया है, क्यों ले उधार, क्या जरूरत ज्यादा ही यदि तो मांग कर ले जाए, उसका हक है, जैसे लड़के का है वैसे लड़की का है। जो उधार लेकर के गई है वो चुकाना पड़ेगा, ये कहीं छूटने वाला नहीं है। बहुत से लोग देखते हैं कि हमने पैसा ले लिया, खूब मजे उड़ा लिए, अब देवे नहीं देवे क्या फर्क पड़ता है, अगला तो मांग नहीं सकता और हम कह देंगे नहीं है, तो भाई ये तो अगले जन्मों में आपको देना ही पड़ेगा, ब्याज समेत देना पड़ेगा। आप ये चाहो कि हम भगवान का भजन कर लेंगे तो उससे हम ऋण मुक्त हो जाएंगे, ऐसे भगवान के भजन से ऋण मुक्त हो जाओगे, कल्याण हो जाओगे, असंभव है। रुपयों का ऋण तो रुपये के चुकाने से ही चुकाया जा सकता है। दान देने वाला यदि सुपात्र को दिया और वह लेने वाला अच्छे काम में लगाया तो ये दोनों बहुत अच्छी बात है। यदि देने वाले ने कुपात्र को दिया और वो बुरे काम में लग गया तो दोनों का पाप में हिस्सा बनेगा। परंतु यदि देने वाले को ये पता ही नहीं है कि ये कुपात्र है तो उसमें देने वाले का दोष नहीं दिखता है। निष्काम भाव से सबसे ऊंचा है। सकाम दान सुपात्र देने से जिस इच्छा से देवे उसकी पूर्ति होगी, लेकिन निष्काम भाव से यदि दान दोगे तो आपका कल्याण होगा। निष्काम भाव वाली बात हम लोग सत्संग में कह करके रह जाते हैं, व्यवहार में लोगों के अंदर सकाम भाव भरा पड़ा है। भगवान की भक्ति की भी बात कहते हैं तो उसमें भी सकामता भरी पड़ी है, परंतु संसार की सकामता की अपेक्षा भगवान की सकामता बहुत ऊंची है। भगवान ने तो कह दिया आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने ऊपर जो ऋण है उसको तो चुकाकर ही मुक्त होंगे। यदि दूसरे पर अपना ऋण है तो उसका तो हम त्याग कर सकते हैं, परंतु अपने पर जो ऋण है उसका त्याग करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। दुनिया में कोई पाप का फल नहीं भोगना चाहे तो उसको सावधान रहना चाहिए कि कहीं मेरे से पाप तो नहीं होता है, और उसमें ऋण के विषय में तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ऋण करके जो ऐश आराम भोगता है वह बिल्कुल मूर्ख है, वो अपने हाथ से जहर खा रहा है। एक मुट्ठी चना चबाकर दिन निकाल लो परंतु ऋण मत ले हो। एक तो ऋण मत ले हो, एक पाप की कमाई मत खाओ। ऋण तो पाप से भी बढ़कर कलंक जैसी बात है। ऋण क्यों लेते हो? संसार में आराम करने के लिए, भोगने के लिए, भगवान के भजन में लगो, सारे कर्म भगवान के अर्पण कर दो। इस कलिकाल में भगवान का भजन नाम जब बहुत बढ़िया बात है, अपने हृदय में वैराग्य की भावना को जगाते रहो, दूसरों की देखा देखी भोगों में मत पड़ो, भोगियों का संग मत करो, जो ये कहते हो कि भगवान अवगान कुछ नहीं है, शास्त्र में यूं ही लिख दिया है, अपने तो सामने भोग का पदार्थ मिलता है, इसको जैसे भी ले हो ले लो, ऐसों का तो मुंह ही नहीं देखना चाहिए। भगवान कहते हैं जो आदमी मेरे में मन लगाकर श्रद्धा सहित भजन ध्यान करता है, मैं उसका त्याग कर ही नहीं सकता हूं। इसलिए भगवान की भावना को ध्यान में रखते हुए भजन में लगना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी ये बहुत लाभदायक बात है। भगवान का भजन करो और घर के काम को भगवान के भजन के साथ शामिल कर लो। नारायण नारायण नारायण।